पृष्ठभूमि। जब जब मैं महाभारती कथानायक कर्ण की जीवनी पर आधारित इस उपन्यास मृत्युंजय का विचार करता हूँ, तब तब अनगिनत ख्याल मन में डोल उठते हैं। मराठी की यह मूल कथा 1967 में मराठी में ख्यातनाम संस्था कॉन्टिनेंटल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई थी। उसके 7 साल पहले से इस कथा वस्तु की पांडुलिपि सिद्ध करने में जुटा रहा। मंत्र विभोर थे वे 7 साल। मैं अपना लौकिकी दैनंदिन जीवन ऐसे भूल ही गया था। आज इस मृत्युंजय नामक कर्ण कथा के प्रेरणा स्रोत का मूल ढूंढने का जब मैं प्रयत्न करता हूँ, तब यह संशोधन का विचार मुझे सीधे मेरी किशोरावस्था की जिंदगी में खींच ले जाता है। उन दिनों मैं माध्यमिक शाला का छात्र था। कक्षा होगी कोई 8वीं या 9वीं। साल होगा 1955 या 57। हम कुछ विशेष नया करना चाहने वाले छात्रों के एक ग्रुप ने स्कूल के सम्मेलन के अवसर पर एक नाटिका का मंचन किया, जिसका नाम था अंगराज कर्ण। यह नाटिका मराठी में थी। उस नाटिका में उस किशोरावस्था में मैंने रोल लिया था कृष्ण का। मुझे आज भी पूरी तरह याद है कि अपने रथ के पहियों को उखाड़ने वाले कर्ण का रोल करने वाले छात्र मित्र ने जो संवाद किया था, वह श्री कृष्ण होकर भी मेरे हृदय को बीत गया था। कुछ कुछ संवादांश मुझे आज भी स्मरण है, जैसे कि इनोटेड कामा, ठहरो पार्थ, तुम क्षत्रिय हो और यह मैं रणभूमि में गड़े रथ चक्र को निकाल रहा हूँ, निःशस्त्र हूँ, युद्ध धर्म व राजधर्म को न भूल जाओ, इनोटेड कामा। नाटिका खेले जाने के बहुत साल बाद भी उन कर्ण संवादों को भूल नहीं सका था। आज मृत्युंजय के लेखक के नाते मुझे इस कर्ण कथा का कथा बीज यह नाटिका और वह युवा कर्ण ही लगता है। मेरे सुप्त मन में ठीक अपनी जगह पकड़कर वह संवाद और वह कर्ण जमकर बैठ चुके थे। आगे चलकर मैं अपना गांव आजरा और अपनी शाला वेंकटराव हाई स्कूल छोड़कर महाविद्यालय शिक्षा के लिए इस कला नगरी कोल्हापुर में आ गया। माध्यमिक शाला के शिक्षा काल में ही मैंने राष्ट्रभाषा हिंदी की कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली थी, विशेष गुणवत्ता के साथ। खासकर उन परीक्षाओं के लिए निरंतर अभ्यास करते रहने से हिंदी काव्य से एक विशेष लगाव सा हो गया था। इसलिए महाविद्यालय पढ़ाई में मैंने हिंदी भी एक विषय ले लिया। संयोग की बात है कि FYBA में हिंदी के पाठ्यक्रम में जाने माने कविश्रेष्ठ केदारनाथ मिश्र प्रभात का कर्ण नामक खंड काव्य अध्ययन के लिए लिया गया। केदारनाथ जी का यह कर्ण खंड काव्य हिंदी साहित्य जगत का एकमात्र अनमोल गहना है। केदारनाथ जी की काव्य भाषा अलंकृत होकर भी सदा सहज सुंदर रही है। इस खंड काव्य में पाठक को झकझोर देने वाली कई काव्य कल्पनाएं हैं। मैं कविश्रेष्ठ के एक ही शब्द पर कई कई महीनों तक विचार करता रहा। कर्ण खंड काव्य के काव्यांत में केदारनाथ जी ने बड़ी ही सहजता से 2 सूक्तियां लिखी हैं। वे हैं, किंतु कर्ण तो पहुंच चुके थे पास पिता के अपने, छोड़ तड़पते मिट्टी में मिट्टी के सारे सपने। इन पंक्तियों में केदार जी ने खंड काव्य के कथानक को संबोध कर थे यह आदरवाचक क्रियापद दिया है। मैं उस आदरार्थी क्रियापद पर ही थम गया। हिंदी के प्रतिभा संपन्न और जाने माने इस कवि ने कर्ण के संदर्भ में थे यह आदरवाचक क्रियापद क्यों लिखा हो। वैसे तो मूल महाभारत की संहिता में गीता प्रदान करने वाले श्री कृष्ण को संबोधन करते समय एक वचनीय शब्द आ चुके हैं। इसी खंड काव्य में काव्यलय को प्रवाहित करने वाली पंक्ति भी आई है, जैसे कि दुसाहस था कि वह पहुंचा रंग राज रंग शाला में, चमके जैसे कमल चमकता कनक किरण माला में। कर्ण के सुवर्ण का इतना बेजोड़ वर्णन और क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने केदार जी का यह कर्ण खंड काव्य 100-100 बार रटा। सुप्त मन में किशोरावस्था में सोए पड़े अंगराज कर्ण खड़े होकर मेरे जागृत मन पर छा गए थे। बार बार मेरा अंतर्जगत झकझोरने लगा। तुझे लिखना ही होगा दानवीर दिग्विजयी अशरण अंगराज कर्ण पर। पहले पहल मन मराठी में खंड काव्य की ही रचना करने का हुआ। कुछ चिंतन के उपरांत प्रत्यक्ष आ चुका इस सूर्यपुत्र, कुंतीपुत्र और सार्थ अर्थ में से ज्येष्ठ पांडव को काव्य के सीमित क्षेत्र में बांधना कठिन है। मन फिर इसी विषय में नाटक की सोचने लगा। जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंचा कि नाटक उससे भी अधूरा साहित्य का प्रकार है जो इस प्रकार महान नायक को आत्मसात कर सके। अंत में विवरणात्मक विशाल उपन्यास लेखन के लिए मन स्थिति दृढ़ हुई। उपन्यास को मन चक्षु के सामने रखकर पहले अध्ययन शुरू हुआ महाभारत का। उसमें भी अधिकतर द्रोण पर्व और कर्ण पर्व पर। इस अध्ययन में मराठी के श्रेष्ठ महाभाष्यकार श्री चीवी बद्ध हमारे सबसे उपयुक्त मार्गदर्शक रहे। महाभारत के अधिकृत संशोधन के कारण ही वैद्य जी को मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के नाते अविरोध चुना गया था। खासकर वैद्य जी ने महाभारती युद्ध का कालखंड एक नए ढंग से निश्चित किया है। महाभारत की संहिता में जो आकाशस्थ नक्षत्रों के वर्णन आते हैं उनका सजग गहरी दृष्टि से अध्ययन करके वैद्य जी ने यह कालखंड ईस्वी पूर्व 2500 से लेकर 3000 तक निश्चित किया है। वैद्य जी का यह गंभीर शोध मेरे लेखक मन को और भी प्रभावित कर गया। कर्ण के जीवन संदर्भ में हिंदी मराठी अंग्रेजी में लिखे गए नाटक काव्य उपन्यास शोध पर भाष्य मैंने पढ़ने शुरू किए। साथ ही साथ बड़ी लगन से टिप्पणियां लेना शुरू कर दिया। इसमें एक लक्षणीय बात मुझे नजर आई। महाराष्ट्र व अखिल भारतवर्ष में प्रसिद्ध दि केसरी वृत्तपत्र के संपादक व मराठी के जाने माने शैलीकार श्री श्री म परांजपे जी ने कर्ण पर मराठी में एक नाटक लिखा है। बहुत सोच विचार कर उस नाटक का नाम उन्होंने पहला पांडव रखा है। बड़े चाव से मैंने वह नाटक पढ़ा। अब अडिग अशरण दानवीर दिग्विजयी राधेय कौंतेय और सार्थ अर्थ से ज्येष्ठ व सर्वश्रेष्ठ व पांडव मेरे लेखक मन पर पूरी छा गए। महाभारती युद्ध का समय जब नजदीक आता है तब तत्वगान व राजकाज की अनमोल पूंजी के साथ लेकर शिष्टाई के लिए हस्तिनापुर आते हैं। अपना सब बुद्धि व प्राण पर लगाकर समझौते का प्रस्ताव कौरवों की राजसभा में रखते हैं। युवराज दुर्योधन अपने गलत अभिमान से उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। महाभारती युद्ध अटल हो जाता है। हस्तिनापुर की राजसभा से श्री कृष्ण जी वापस जाने के लिए निकलते हैं। उन्हें विदा करने के लिए आए महारथी वीरों में से वे सिर्फ कर्ण को हाथ थाम कर अपने रथ पर चढ़ा लेते हैं। दोनों महावीर योद्धा राजनगर की सीमा पर एक विशाल व घने वटवृक्ष के तले पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जी बड़े ही संयम से बड़ी कुशलता से कर्ण के जन्म रहस्य का स्फोट करते हैं और अर्जुन को गीता प्रदान करने वाला अपना वही सुमधुर भाषा वैभव फिर से कर्ण पर लगाकर कर्ण को पांडव पक्ष में लाने के लिए आह्वान करते हैं। कर्ण मात्र अपना स्नेह भाव दुर्योधन को दिया वचन मन में जगा रखते हुए अड़िग रहते हैं और बड़ी नम्रता से श्री कृष्ण जी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। मूल महाभारत में श्री कृष्ण कर्ण की इस भेंट का जो वर्णन आता है वह हृदयाग्राही व बेजोड़ होने के कारण निर्लेप मन से पढ़ने लायक है। ठीक ऐसी ही है युद्धभूमि पर प्रस्तावित अपने शिविर से अर्घदान के लिए गंगा तट पर आए कर्ण कुंटी भेंट की घटना। समस्त विश्व के मानवी माता पुत्र के रिश्ते संबंध में इतना गहरा व बेमिसाल कथा भाग अन्य किसी भी भाषा में नहीं है। माता पुत्र की यह भेंट परस्पर सही रिश्ते जानने के बाद पहली बार होती है। उसे सत्य को जानने के लिए कर्ण को लगभग 75 साल घूरते हुए राह देखनी पड़ी। महाकवि व्यास जी ने बड़ी ही रोचकता से इस भेंट की योजना लोक माता गंगा के किनारे की है। यहाँ केवल 3 ही महान व्यक्ति रेखाएं उपस्थित हैं, कर्ण, कुंती और गंगा माता। पूरा गंगा तट निर्जन है। स्वयं व्यास जी चौथी महान व्यक्ति रेखा बनकर सर्वसाक्षी सवित सूरज के रूप में गगन में खड़े। कितना लुभावना है यह साहित्य की भूमि पर उतरता हुआ पाठक की आंखों के सामने आने वाला यह चित्र। इस भेंट में पहला ही क्षण चित्र कितना आश्चर्यजनक है। कर्ण कदम वृक्ष की एक डाली पर अपना उत्तरीय प्रतिदिन की तरह रखकर स्नान व अर्घ के लिए गंगा जल में उतरते हैं। इतने में वृद्ध राजमाता कुंती आकर उस अधरीय की छांव में खड़ी हो जाती है। कितना हृदय स्पर्शी है यह विरोधाभास। वास्तव में माता के आंचल की छांव में पुत्र को जीवन धूप से बचने के लिए खड़ा होना चाहिए, यहाँ उल्टा हो गया। माता ही पुत्र के वस्त्र की छाया में खड़ी है धूप से बचने के लिए, मानो वह कर्ण पिता सूर्य से मुंह छिपा रही है। हर रोज की तरह स्नान अर्घदान के बाद कर्ण हाय कोई याचक पुकारते हुए गंगा पर टहलते, कोई भी नहीं। यह जानकर कदम बतली अपने अधरिये के पास आते हैं, अधरिये को डाली से खींचते हैं। उसके पीछे अपने जन्मदात्री कुंती को देखकर उनका स्वाभिमान हिलोर उठता है। दोनों का निर्जन गंगा तट पर पाठक के तन पर रोंगटे खड़ा करने वाला संवाद हो जाता है, मानो दो विलक्षण सुवर्ण राजपात्र आपस में टकरा रहे हों। कर्ण अपने त्याग के लिए कुंती को दोषी ठहराकर उसकी निभर्सना करते हैं। कुंती अपनी विवशता मर्म भी शब्दों में बताती है। अंत में कर्ण कुंती को माता रूप में स्वीकार करते हैं, पहली बार उसे माँ कहकर पुकारते हैं। प्रारंभ में संघर्ष शुरू हुआ यह कथा भाग अंत में पाठक का हृदय हिलाकर समाप्त हो जाता है। यह कर्ण कुंती भेंट व इसके पहले घटी श्री कृष्ण कर्ण भेंट एक लेखक के नाते मुझे चुनौती सी लगी। इन दोनों घटनाओं में मूल महाभारतीय संहिता में रह गई कुछ त्रुटियां मुझे महसूस होने लगी, बेचैन करने लगी। कई दिनों तक मैंने इस पर चिंतन किया। कर्ण कुंती कृष्ण इन तीन व्यक्ति रेखाओं ने मुझे रात दिन घेर रखा, अकथनीय ढंग से मुझे वे सताने लगे। एक दिन स्नान आदि दैनिक कर्म के बाद मैं पूजा करने बैठा। भावपूर्ण मन से मैंने ओम भूर्भुव स्वः इस सवितु मंत्र का उच्चारण किया, ठान कर लिखने बैठा। आत्मनिवेदन परक शैली का मुझे ही चौंका देने वाला आविष्करण आप ही आप होने लगा। पहले प्रकरण में कर्ण बोलने लगे, आज मुझे अपनी कहानी सब कुछ सुनानी है, बस मैं लिखता ही चला गया। पहला प्रकरण पूर्ण हुआ, अवर्णनीय आनंद की लहरों से मेरा मन भर उठा। निर्मिति का आनंद केवल कलाकार ही जान सकते हैं। झट ही दूसरा प्रकरण कर्ण को पालने वाले अधीरथ व राधा के पुत्र शोण के आत्मनिवेदन से शुरू हुआ। वे दिन मंत्र भारित थे, सृजन का काल कला जगत में हमेशा ही मंत्र भारित रहता है। इन दो प्रकरणों के बाद मुझे तीव्रता से महसूस होने लगा कि भाई यह कोई ठीक बात नहीं। जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह महासमर हुआ उस कथा विषय को जिंदा करने वाली भूमि देखे बिना लिखना नीरा झूठापन है। मुझे कुरुक्षेत्र व इर्द गिर्द का परिसर आंखों से देखना ही होगा। अब मन ही मन इस बात पर अड़ गया। उन दिनों मैं कोल्हापुर के राजाराम हाई स्कूल में माध्यमिक शिक्षक होने के नाते सेवा करता था। सबसे पहला सवाल था शहर के लिए जरूरी दो तीन दिन महीनों की छुट्टी का। इसके बाद सवाल था शहर के लिए आवश्यक पैसों का। हर तरह की कोशिश के बाद मैंने इन समस्याओं का हल किया और एक शुभ दिन मैं अकेला ही निकला कोल्हापुर से कुरुक्षेत्र तक सैर करने के लिए। साथ में था एक अच्छे लेंस वाला कैमरा और मन में थी कुरुक्षेत्र भूमि पैदल ही घूमने की अदम्य इच्छा। मैं केवल इतना ही जानता था कि कुरुक्षेत्र भूमि दिल्ली के कहीं आसपास है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री बुद्ध प्रकाश जी से मैंने पत्र व्यवहार किया। उनका सानंद जवाब आया, अवश्य आ जाइए, जरूर सहायता मिलेगी। मैं जब दिल्ली पहुंचा तब जाड़े के दिन थे। सन 1965 का अक्टूबर महीना था। करोल बाग में स्थित पूना गेस्ट हाउस में अपना सामान रखकर मैं दिल्ली से कुरुक्षेत्र जा पहुंचा। कुरुक्षेत्र के गीता हाई स्कूल के प्रमुख अध्यापक श्री विश्वनाथ जी के घर उनके परिवार के साथ ही एक सदस्य बनकर मैं रहा। अब मेरा कुरुक्षेत्र पर्यटन शुरू हुआ। हर रोज बड़े सवेरे 6 बजे उठकर मैं स्नान नाश्ता करने के बाद पैदल ही चल पड़ता। सबसे पहले मैंने देखा था वह स्थान जिसे कर्ण का टीला कहते हैं। यह स्थल महाभारतीय युद्ध में सेनापति कर्ण का सेना पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। उस टीले पर मैं आधा घंटा तक आंखें भींचे घास पर लेटा रहा। वहां से बहने वाले बंद वायु के झोंके मुझसे अबोध भाषा में बातें कर रहे थे। वह अनुभूति अवर्णनीय थी। शहर का दूसरा चरण शुरू हुआ। अब मैंने कुरुक्षेत्र पर स्थित जलपूर्ण सरोवर एक के बाद एक देखे। पहले देखा सूर्य सरोवर, उस सरोवर का वर्णन महाभारत में आता है। उसके बाद ज्योतिसर यानी ज्योति सरोवर, यह वह स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का हितोपदेश दिया था। आज वहाँ पर संगमरमर का रथ और उसमें स्थित अर्जुन को उपदेश देने वाले श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। संगमरमर का एक गीता मंदिर भी है। इसके बाद सियोगाया नदी दृश्य द्वती देखने का, यह वह नदी है जिसमें दृष्टि ने युद्ध में हत सभी योद्धाओं के लिए तर्पण किया था। श्री कृष्ण जी के कहने से पहला तर्पण कर्ण को दिया था। अब शहर का तीसरा चरण आ गया, जहाँ कर्ण के रथ का पहिया युद्धभूमि में फंस गया था। वह अमीन पहाड़ी में देख रहा था। मेरे मन में कई सम्मिश्र भावनाओं की खलबली मची हुई। इसके बाद मैं हरियाणा में उतरा। कर्ण के नाम पर मशहूर करनाल नामक शहर देखा। वहाँ से मैं मेरठ के नज़दीक सदियों से विख्यात हस्तिनापुर आ गया। वहाँ आज भी कर्ण की निशानी बताने वाला एक कर्ण मंदिर। समस्त भारतवर्ष में शायद यह एक ही मंदिर होगा जिसमें किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं है। उस मंदिर के स्थान पर खड़ा रहकर कर्ण याचकों को दान दिया करते थे। इस स्थान पर मैं विचारों में खोया खड़ा रहा। इसी जगह पर कवच कुंडल दान की विश्वविख्यात घटना घटी थी। यहाँ से मैं दिल्ली वापस लौटा तो कभी इंद्रप्रस्थ थी। यहाँ मैंने पांडव बावड़ी नामक जगह देखी। वापस लौटते समय मैंने मथुरा, श्री कृष्ण का जन्मस्थल, वृंदावन, गोवर्धन व गोकुल देखा। बाणों से ठसाठस भरे हुए तरकस की तरह विचार मन में लेकर मैं कोल्हापुर लौटा। अब मुझसे लिखे बिना रहना मुश्किल था। एक के बाद एक प्रकरण सिद्ध होने लगे, जैसे कि दुर्योधन, कुंती, फिर से कर्ण, शोण व सरताज जैसा अंतिम प्रकरण श्री कृष्ण। मुझे आग्रह से कहना है कि महाभारत न केवल पुराण कथा है, बल्कि इस महाभारत का प्रागैतिहासिक काल का सबसे पुराना उपलब्ध इतिहास है। कर्ण के समस्त जीवन को स्पर्श करने वाला उपन्यास मृत्युंजय सिद्ध हो गया। यह पांडुलिपि 1800 पृष्ठों की बन गई। सौभाग्यवश इस उपन्यास को मराठी के कॉन्टिनेंटल प्रकाशन के अनुभवी प्रकाशक श्री अनंत राव जी कुलकर्णी मिल गए। साथ साथ विख्यात चित्रकार श्री दीरानाथ जी दलाल सजावट के लिए प्राप्त हो गए। 1967 में गणेश जन्म के शुभ अवसर पर मराठी के महाकवि गजानन माडगुलकर जी ने के मांगलिक हाथों से प्रकाशन हुआ। मराठी व हिंदी पाठकों ने इस कर्ण कथा मृत्युंजय का खुले दिल से स्वागत किया। मृत्युंजय अब मेरा नहीं रहा, वह समस्त पाठकों का हो चुका है। भारतीय ज्ञानपीठ के रत्न बार की संचालक श्रीमान लक्ष्मी चंद्र जैन ने मृत्युंजय का 1974 में हिंदी अनुवाद करवाया। अनुवाद के इस कार्य को माउंट KSVA कॉलेज के प्राध्यापक श्री ओम शिवराज जी ने बड़ी सामर्थ्य से निभाया है। सन 1975 में ही प्रथम प्रयोग से मराठी रंगमंच पर खेला गया इसी नाम का नाटक आज भी खेला जा रहा है। मैं अब भी जब मृत्युंजय का विचार करता हूँ, मुझे तीव्रता से लगता है कि यह सारे जग को उजाला देने वाले आकाश के स्वामी सवतु यानी सूर्यदेव की ही इच्छा थी। बड़ी नम्रता से मैं हमेशा कहता आया हूँ और कहता रहूँगा कि मैं बस एक निमित्त मात्र हूँ। आज इस नए संस्करण के प्रकाशन के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी पाठकों की ओर से एवं व्यक्तिगत श्रद्धा भाव से यह नूतन अर्घ्यदान उस अशरण महादानी सूर्यपुत्र कर्ण के ही चरणों में अर्पित करता हूँ। शिवाजी सामंत।